ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज के इस 24 मई के संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप इस कार्यक्रम में आए। अभी कुछ ही दिन पहले हमने कौन सा उत्सव मनाया? नरसिंह भगवान का जन्म दिवस, उसी पर आज चर्चा करेंगे। नरसिंह जयंती, इसको नरसिंह चतुर्दशी कहते हैं। कितने लोगों को कथा पता नहीं इसके बारे में, जिसने आज तक हमने अपने जन्म में नरसिंह प्रह्लाद की कथा सुनी नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं इसके अंदर? इसका मतलब सबने सुनी है। कितने लोगों ने सुनी है बचपन से कथा? हरि बोल। भारतवर्ष में जन्म लेने का यही भाग्य है। अगर मैं अमेरिका में यह प्रश्न पूछता तो सब लोग देखते हैं कौन है प्रह्लाद, ये किसकी बात कर रहे हैं। भारतवर्ष में जन्म लेने का यही लाभ है कि भारतवर्ष में जन्म लेने के जन्म लेने से ही बचपन से ही ये कहानियां हमको सुनने को मिलती है। मुझे अभी भी याद है, मैंने कभी भी रामायण बचपन में नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी मुझे बचपन में सब रामायण पता था। हरे कृष्ण में आने के पहले सब रामायण पता था मुझे, महाभारत भी बहुत पता था, कृष्ण भगवान की बहुत सारी कहानी हरे कृष्ण में आने के पहले ही पता थी मुझे। कल्चर है हमारा, ये कल्चर, और इसी की वजह से भारत भूमि जो है महान है। और भारत भूमि में जन्म लेने के लिए पिछले जन्मों के अंदर बहुत पुण्य करने पड़ते हैं। उसी व्यक्ति को बहुत जन्मों के पुण्य के बाद में इस भारत भूमि में जन्म मिलता है, क्योंकि भारत भूमि के अंदर बहुत संतों ने जन्म लिया है, बहुत सारे भगवान के अवतार ने जन्म लिया है, उनके चरण कमल लगे हैं इस भूमि को। उसी भूमि में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है, कोई ऐरा गहरा आदमी जन्म ले सकता नहीं। यहाँ पर जानवर बन के जन्म लेना भी यहाँ पर भाग्यवान है, क्योंकि ये भूमि जो है उसको भगवान के कई अवतारों के चरणों का स्पर्श हुआ है। उस भूमि को आपका स्पर्श होना ये बहुत भाग्य की बात है। इसलिए मैं सब लोगों को एक, अभी आपको लगे आपने एक अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी इधर बात क्यों कर रहे हैं ऐसा आपको लगेगा, लेकिन मैं सभी लोगों को विनती करते रहता हूँ कभी भी रोड पर थूकना नहीं, क्योंकि आप रोड पर नहीं थूक रहे हैं, आप भारत भूमि पर थूक रहे हैं। जब हम धाम में जाते हैं ना यात्रा में, तो भी हम बताते हैं कि कभी भी वहाँ पर थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भूमि देवी है, और ये भूमि देवी जो है ना वो भगवान विष्णु की पत्नी है, भूदेवी और श्रीदेवी। ये भूमि देवी के गर्भ से ही परादेव ने भौम को जन्म दिया था। जब पृथ्वी को भगवान ने समुद्र के तल से उठाया था और अपने कक्ष में रखा था, हिरण्याक्ष जो हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था, उसने लात मारकर भूमि देवी को समुद्र में ढकेल दिया था। तो भगवान ने वराहदेव का अवतार लेकर उस भूमि को समुद्र के तल से उठाया और अपने कक्ष में रखा, और जब उनका संबंध समागम हुआ तो उसके द्वारा एक पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा भौम। फिर उसने असुरों का संग किया, इसलिए उसका नाम भौमासुर पड़ा, उसी को हम लोग नरकासुर के रूप में भी जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये भूमि देवी जो केवल पत्थर और मट्टी नहीं है, ये भी एक देवी है। जैसे यमुना गंगा, ये नदी केवल नदी नहीं है, ये भी एक देवियाँ हैं। ये देवियाँ नदी के रूप में सेवा करती है, भूमि देवी पृथ्वी के रूप में, भूमि के रूप में सेवा करती है। इसलिए हम रोज उठने के बाद में, एक्चुअली भारत में संस्कृति है, पहले भूमि को प्रणाम करते हैं, क्योंकि अभी हम आप पर पांव रख के चलने वाले हैं दिन भर। और भूमि तत्व का महत्व क्या है? भूमि तत्व का महत्व है कि वो सबको आधार देती है, आपके बिल्डिंग के लिए, आपके झोपड़ी के लिए, आपके गाड़ी के लिए, आपके लिए चलने के लिए, वो एक आधार है, उसके ऊपर आप चलते हो। अगर वो आधार नहीं होता तो आप हर समय गिर जाते, अगर वो स्थिर नहीं होती तो आप सब जगह गिर जाते। आपने यहाँ पार रखा तो भूमि उधर गई तो आप इधर गिर गए, ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 700 करोड़ लोगों को जो इंसान है उनको आधार देती है, फिर हजारों करोड़ों जानवरों को, कीटकों को, मच्छरों को या चींटियों को, सबको आधार देती है। फिर हजारों पर्वत राजी है, इधर हिमालय, विंध्य, सह्य, उधर आल्प्स, उधर कितने कितने बड़े बड़े पर्वत है दुनिया में, वो सबको आधार देती है। लेकिन वही पृथ्वी इतना सारा बोझ झेल लेती है, लेकिन पाप का और असत्य का बोझ वो नहीं झेल सकती। इतना बड़ा बोझ झेलती है, इतने लोगों का वजन, इतने बिल्डिंग का वजन, इतने समुद्र का वजन, इतने कुंडों का वजन, इतने पहाड़ों का वजन, इतने जानवरों का वजन, इतने पेड़ों का वजन वो झेल सकती है। कभी भी अगर आपको पूछा जाए कि आप 9 महीने की गर्भवती थी तो आपको बोझ था क्या बालक का, आप बोलेंगे है लेकिन नहीं है, क्योंकि वो प्रेम की चीज़ है ना। वो प्रेम से जब ये गर्भवती होती है माता तो बोलेगे 4 किलो का बच्चा हो गया, बाप रे बाप, क्या राक्षस बैठा है क्या अंदर, ऐसा बोलती नहीं माँ कभी, बोले थोड़ा सा ज़्यादा वजन था, 4 किलो था, ऐसा बोलेगी। क्योंकि प्रेम जब होता है ना तो वजन महसूस नहीं होता है। वैसे ही पृथ्वी पर जब तक सत्य का और धर्म का आचरण होता है तब तक पृथ्वी पर कोई बोझ नहीं होता है। कभी पृथ्वी बोलेगी नहीं, रे तुम लोग कितने बढ़ गए हो, चलो जाओ यहाँ से, मैं झेल नहीं पाती आपको, ऐसा नहीं बोलती हो। जब वो पाप करते हैं और असत्य का सहारा लेते हैं तब पृथ्वी को उनका वजन असह्य होता है, तो फिर वो रोती हुई जाती है ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी ये सहन नहीं हो रहा है, या रावण या कंस ये सब लोग आकर मुझे असत्य और पाप के बोझ से मुझे जीवन मेरा मुश्किल कर रहे हैं, बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। तब ब्रह्मा जी उनको विष्णु के पास ले जाते हैं, बोलते हैं, विष्णु आते हैं बोलते हैं चिंता मत करना मैं आऊँगा, अलग अलग समय में बोलेंगे, एक बार बोलेंगे मैं राम के रूप में आऊँगा मनुष्य बनकर और रावण का संहार करूँगा, एक बार बोलते हैं मैं कृष्ण बनकर आऊँगा और कंस का सबका संहार करूँगा। वैसे जब हिरण्याक्ष ने लात मारी पृथ्वी को तो भगवान ने कहा कि मैं वरा रूप में आऊँगा और हिरण्याक्ष का संहार करूँगा, तो प्रभु वरा रूप में आए और उन्होंने पृथ्वी का बचाया और हिरण्याक्ष को मार डाला। उसके बाद में हिरण्यकशिपु ने जाकर हिरण्याक्ष की पत्नी को सांत्वना दिया, तुम रोना नहीं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, ये सबका बदला लूंगा, ये विष्णु ने मेरे बड़े भाई को मारा है, मैं नहीं छोड़ूंगा विष्णु को। तपस्या करने बैठ गया, एक हजार स्वर्ग के साल, मतलब कितने मालूम है आपको, स्वर्ग में 1 दिन 6 महीने का होता है, ऐसे 15 दिन का एक होता है पक्ष होता है, ऐसे 30 दिन का एक महीना होता है, ऐसे एक 360 दिन का एक साल होता है, ऐसे 1000 साल, मतलब कितना हो गया मालूम है आपको, 180,000 साल वो केवल एक पैर के अंगूठे पे खड़ा था। आप खड़े हो सकते हो 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के लिए, ताड़ासन मालूम है, ताड़ासन दोनों हाथ ऊपर और एक पैर के घुटने पर और एक ही पैर जमीन पर, वो भी अंगूठे के ऊपर और दोनों हाथ आकाश के ऊपर और आंख बंद और पूरा ध्यान। इतना भयंकर तपस्या किया उसने कि एंड में उसके सर से अग्नि निकला और वो अग्नि का जो आँच है ना, आँच गर्मी, वो ब्रह्मा लोक को जाके तकलीफ देने लगा। ब्रह्मा लोक के अंदर वो आँच जो है ना, वो ऐसा भी कैसा गर्मी हो रही है यहाँ पर, आप बोल रहे कौन कौन अग्नि जला रहा है इधर, इतनी गर्मी क्यों हो रही है। तो वैसे ब्रह्मा लोक के अंदर गर्मी बढ़ गई बहुत, ब्रह्मा लोक के अंदर परेशान हो गए सब लोग, तो ब्रह्मा जी को मजबूरी से उतार दर्शन देना पड़ा। बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर नहीं आए, वो बोले कौन आतंक मचा रहा है नीचे, जाओ उसको संभालो, क्या चाहता क्या वो देख लो। तो ब्रह्मा जी आ गए, दर्शन दिया, बोले क्या चाहते हो, बोले मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुमको कैसे अमर बनाऊंगा, अगर मैं अमर बनाने की शक्ति मुझ में होती तो मैं पहले खुद को अमर बना दिया होता, फिर लोगों को वो वरदान बांटते घूमता मैं, लेकिन मैं खुद ही इधर मरने वाला हूँ, मुझे मेरा भी एक दिन जन्म हुआ था, मेरा भी बर्थ डेट है, तो मेरा भी डीओडी होगा एक दिन। क्या मतलब डीओडी का मतलब क्या होता है? डेट ऑफ डेथ। तो ब्रह्म तो हिरण्यकश्यप को लगा कोई बात नहीं, हम लोग दिमाग लगाएंगे और सब अपना काम पते कर लेंगे। तो लिस्ट बनाया कि आदमी कैसे मरता है इस दुनिया में, हवा में मरता है, जमीन में मरता है, पानी में मरता है, हाँ शस्त्र से मरता है, अस्त्र से मरता है, रोग से मरता है, इंसान से मरता है, राक्षस से मरता है, पंछी से मरता है, किसी कीटक से मरता है, कोई वायरस HIV इससे मरता है, ऐसे कई प्रकार की मृत्यु होते हैं ना, अन्य जीवों के द्वारा मृत्यु होती है। उन्हें सारा वरदान मांग लिया उनसे, दिन में मरता है, रात में मरता है, सब कुछ सारा चीज कवर कर लिया। बोलते अभी इसके आगे कोई मरने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, एकदम खुश हो गया वो, बोला अभी तो मरने की संभावना नहीं, ना देवता मार सकता है, ना मनुष्य मार सकता है, ना जानवर मार सकता है, ना दिन में मर सकता हूँ, रात में मर सकता हूँ, ना जमीन पर, ना आकाश में, ना समुद्र में, ना पानी में, अभी तो मैं डेथ प्रूफ हो गया। हमारे साथ वाटर प्रूफ होता है ना घड़ी, ऐसा मैं डेथ प्रूफ हो गया, अभी मेरे को मृत्यु आने वाली नहीं। एकदम अहंकार बढ़ गया। क्या क्या मालूम है, उन्होंने इंद्र को पानी भरने को बुलाया घर पे, और बाकी लोगों को जमीन पोछने के लिए बुलाया, मतलब खाली अपमान करने के लिए, आ जाओ तुम लोग बड़े बड़े लोग, आओ पानी भरो उधर, जाओ मेरे गाय का गोबर निकालो उधर, आओ झाड़ू मारो उधर, सबको दास बनाकर रखा उसने, ऐसा भयंकर उसका अत्याचार था। दुनिया मुट्ठी में कर ली उसने, केवल पृथ्वी लोग नहीं किया, 14 लोग भी राज्य हो गया उसका। ऐसा देखता था ना ऊपर ऐसे, तो देवता लोग कांपते थे इसे ऊपर ऐसे, क्या हो गया अभी कुछ आदेश देगा तो क्या होगा, इतनी शक्ति थी उसके अंदर, सारे देवता लोग दास बनकर थे और कांपते थे उसको देख के। लेकिन जब जिस आदमी को बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त होता है ना, तो उसको उस अधिकार की आदत हो जाती है। समझो अभी मैं प्रधानमंत्री बन गया, समझो सब लोग मुझे पाए छू रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, तो मुझे उसकी आदत हो जाएगी। जिस दिशा में जाऊंगा, पूर्व में जाऊंगा, पश्चिम में जाऊंगा, उत्तर में जाऊंगा, दक्षिण में जाऊंगा, किसी भी राज्य में जाऊंगा, सब जगह रोज मुझे वंदन कर रहे हैं, और समझो करोड़ों लोग वंदन कर रहे हैं और एक आदमी वंदन नहीं करता आपको, कैसा लगेगा आपको? आप ये सोचेंगे नहीं, अरे इतने लोग वंदन कर रहे हैं, भूल जाओ यार, एक ने नहीं देखा तो क्या फर्क पड़ता है। आपको लगेगा उसने वंदन क्यों नहीं किया, क्या समझता है वो अपने आप को, क्या जानता नहीं हूं मैं कौन हूं, ऐसा देख लूंगा तो जल जाएगा वो, इतनी शक्ति है मेरे अंदर, उसको वंदन करना चाहिए मुझे। तो सारी दुनिया को छोड़कर वो उसी के पीछे उसका दिमाग लगेगा, क्यों नहीं वंदन कर रहा है मुझे वो। ऐसा एक ही आदमी था पूरे दुनिया में, वो कौन था? हाँ उसका बेटा प्रहलाद। वो प्रहलाद को बड़े प्रेम से उसने अपने गुरुकुल में सिखाने को भेजा। अभी गुरुकुल मतलब क्या? राक्षसों का गुरुकुल, उसके अंदर शत्रु को कैसे मारना, शत्रु कैसे बनाना, अपना कौन, पराया कौन, राजनीति, कूटनीति, ये सारी चीज़ें वहाँ सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि धर्म सिखाते हैं, शास्त्र सिखाते हैं, मेडिसिन सिखाते हैं, ऐसा नहीं। तो थोड़ा सा एक फर्स्ट सेशन पूरा हुआ उसका, एक बोला ना अभी चौथी पूरी हो गई समझो उसकी, तो बुलाया पापा ने बुलाया, तो मम्मी ने उसको बड़ा अच्छा फूल वूल पहना के अच्छा भेजा, पापा ने गोद में बिठाया, बोला बेटा तुमने गुरुकुल में क्या सीखा, सबसे अच्छी बात क्या सीखी? तो बोलता है तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि माम। बोलते आप पागल हो क्योंकि आप लोग, आप संसार में फंसे हो, आप लोगों को, आप जैसे लोगों को इस दुनिया में न फंसते हुए वन में जाना चाहिए और भगवान को ढूंढना चाहिए। क्या बात कर रहे हो बकवास, वो भगवान विष्णु मेरा दुश्मन है और तुम उसी को प्राप्त करने की, भक्ति करने की बात कर रहे हो, नॉनसेंस। हे टीचर को बुलाओ, हे इधर आ जाओ, क्या सिखाया तुमने इसको? बोले नहीं हमने नहीं सिखाया, हमारा टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, जो हमने टेक्स्ट बुक में सिखाया वो टोटल डिफरेंट था, ये कहाँ से सीखा मालूम नहीं हमको। सर सर प्लीज़ हमने नहीं सिखाया। लेकिन सर चिंता मत करना, अभी तो बच्चा है, पता नहीं कहाँ सीखा है, हम आके उसका पूरा ब्रेन वॉशिंग कर देंगे, चलो भेज दो दोबारा एक बार, नेक्स्ट टाइम आएगा ना पूरा ब्रेन साफ मिलेगा आपको। वापस गया, उसको बोला बेटा तू क्या क्या बकता है जाके, हमारा स्कूल हमारा नाम का स्कूल है, इधर हमारे नाम का बदनामी हो रहा है, तुमको अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको याद करना है, अगली बार पापा पूछेंगे तो वही बोलना है आपको। तो मैं ठीक है, तो दूसरी बार जो जाने का समय आया, मतलब चौथी हो गया, अभी आठवीं हो गया, तो उस टाइम जब पुकारा उसको तो बुलाया, तो मम्मी ने खास करके उसका अच्छा श्रृंगार किया, मतलब उसको अच्छा देखेगा तो जरा देख के भी आनंद आएगा ना, पिताजी को गुस्सा नहीं होगा उतना, सजा धजा कर श्रृंगार करके भेजा उसको, फिर गोद में बिठाया, बेटा बताओ तुमने अपने गुरुकुल में सबसे बेस्ट क्या सीखा, तो बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। बोलते ये नौ विधि है, ये नौ विधि से विष्णु का स्मरण करना चाहिए, विष्णु का पूजन करना चाहिए, विष्णु को आत्मनिवेदन करना चाहिए, जीवन समर्पित करना चाहिए। ऐसा ढकेल देता उसको, व्हाट नॉनसेंस, तो वो अपने आप ही बोल रहे इस टाइम पे, सर 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 देखो देखो हमने नहीं सिखाया उसको, हमने नहीं सिखाया है, ये पता नहीं शत्रु लोग आके सिखा रहे हैं उसको, हो सकता है रिसेस के अंदर को सिखाते होंगे, हमने जब खाना खाने जाते हैं लंच ब्रेक टी ब्रेक उसके अंदर हमारे दुश्मन आके उनको सिखाते होंगे, अरे इतने कड़े कोट बंदोबस्त के अंदर कौन आता है तुम्हारे गुरुकुल के अंदर, राक्षसों के अड्डे में किसकी हिम्मत है आने की, इतना कड़ा पहरा है उधर, कौन सा शत्रु आता है पता नहीं सर, मालूम नहीं हमको। बाद में बोलते हैं कि सर देखो ये बच्चा है ना अलग ही बच्चा है, इसको हम सिखा नहीं सकते, ये बहुत ही आप हमको ही मारेंगे, लेकिन हम पहले ही बोल लेते हैं कि ये बच्चा हमारा सुनता नहीं है, पता नहीं कहाँ से सीखता है, कहाँ से आता है, क्या बकता है हमको मालूम नहीं, हम जिम्मेदार नहीं उसके लिए, फिर भी जाओ उसको कोशिश करो। फिर भी वो अगली बार आके वैसा ही कुछ बोलता है भगवान के बारे में, इसका मतलब हिरण्यकशिपु को देखकर और सुनकर और सोचकर उसके बारे में दुनिया कांपती रहती है, लेकिन बालक तो इत्मीनान से छाती फुलाकर कह रहा है भगवान पिताजी आप उल्लू हो, आप उल्लू के पट्टे हो, आपको अज्ञान है, आप माया में हो, आप अहंकार में फंसे हुए हो, आपको विष्णु का भजन करना चाहिए। अच्छा मेरे शत्रु का नाम लेता है, दुनिया मेरा नाम लेती है, उसने सबको दुनिया में अपना मंत्र देकर रखा था, बोला मेरा मंत्र जपो। ये मंत्र जाप करके मेरी प्राप्ति करने, मैं ही भगवान हूं, ऐसा है ना, देखो कुछ वरदान प्राप्त कर लिए यहां से वहां से तो हमको लगता है भगवान हो गए, दुनिया में ऐसे बहुत भगवान है, थोड़ा सा कुछ शक्ति प्राप्त कर लिया बोलते मैं भगवान हूं, अमुक तमुक 100,000 1,008 महामंडलेश्वर परम भगवान --XYZ, ऐसा लोगों को लगता है। एनीवेज कथा बहुत लंबी है, तो आखिर ने कहा, उसने कहा पिताजी को, पिताजी ने कहा ये जितनी हिम्मत तुझके अंदर अंदर है ना कहाँ से प्राप्त हो रही है, एकदम सिंपल जवाब दिया उसने, उसके अंदर कोई ऐसा गर्व या ऐसा नहीं था कि वो बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा नहीं था, होता ना बड़े बाप के लोग कैसे होते हैं, दो चार गाड़ियाँ घुमाते हैं, दो चार टायर ठोक देते हैं, इधर दो चार लड़कियों घुमाते हैं, इधर पैसा उड़ा देते हैं, और घर में आके पिताजी को उल्टा जवाब देते हैं, उससे और पैसा लेके और उड़ाने को जाते हैं, ऐसा नहीं था वो सज्जन लड़का था वो, लेकिन वो पिताजी को एकदम प्रेम से कह रहा है, ऐसा नहीं कि वो दंडता से कह रहा है, वो कह रहा है पिताजी जहाँ से आपको शक्ति प्राप्त होती है वहीं से मुझको शक्ति प्राप्त होती है। मतलब क्या है, एक सीधे जवाब का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जवाब दिया उन्होंने। कहाँ से प्राप्त होती है, बोले वही विष्णु, वो सब जगह फैला हुआ है, किधर है तुम्हारा विष्णु, बोले कण कण में समाया हुआ है, कहाँ बताऊँ आपको, वो पूर्व में है, पश्चिम में है, इधर है, उधर है, हर वस्तु में है। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सोने का समय नहीं है, अभी खंबा फाड़ के आने वाले हैं। बोले किधर है तुम्हारे भगवान, बोले सब जगह पर है। अच्छा इधर देखते उधर होते, एक खंबे में भी है क्या, हाँ इधर भी है, और सब जगह है तो उधर भी है, तो भगवान देखो कैसे हमारे, अभी तक भगवान को ऐसा टाइम नहीं मिला है कि अभी मेरा प्रहलाद है ना इधर लेफ्ट हैंड में दिखाएगा, फिर दो घंटा मिलेगा मुझे, फिर मैं मेकअप वेकअप करके आ जाऊँगा। ऐसा नहीं है, वो किधर बोलेगा वो उनको पता नहीं है, तत्क्षण उन्होंने कहा हाँ एक खंबे में है, अच्छा एक खंबे में ही है, देखता हूँ क्या करते तुम्हारे भगवान, अभी मैं मेरी मुष्टि से प्रहार करूंगा और खंबे का पाउडर बना दूंगा और देखता हूँ तुम्हारा भगवान कहाँ से आके तुझे बजाता है। ऐसा करके उसने वो लेफ्ट हैंड से हाथ में तलवार उठाया, वो मेरी मम्मी है ना एक ड्रामा चल रहा था, डॉक्टर शेट्टी है ना हमारे, अशोक शेट्टी, वो हिरण्यकशिपु बने थे, ऑलरेडी 6 फुट 2 इंच पर तलवार हाथ में 4 फुट ऐसा उठाया। और मेरी बेटी है बड़ी वाली, तो छोटी थी बहुत, 7 साल की, वो प्रहलाद बनी थी, वो कम 3 साढ़े 3 फुट की थी वो, तो ऐसा तलवार उठाया, प्रहलाद तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो मेरी मम्मी डर गई पहले लाइन पे, बोले इतना बड़ा पहाड़ जैसा आदमी, हाँ इतना बड़ा, उसका 2 फुट का मुकुट और 4 फुट की तलवार, डर गई थी वो। मेरी बेटी ऐसी खड़ी, पिताश्री तो बाद में पिताजी फ्रस्ट्रेट हो गए एकदम, जाओ इसको मार डालो, ये ना बॉडी पर आया हुआ कैंसर है, और जब बॉडी पे कैंसर आता है ना, तो अपने बॉडी का कैंसर होगा तो फिर भी काटना चाहिए उसको। अब बोलेंगे नहीं नहीं मेरे हाथ का है वो, मेरे हाथ को बड़ा प्यारा है, ऐसा रखते नहीं, कैंसर आया तो ट्यूमर आया तो उसको हम काट देते हैं। वैसे ही ये राक्षसों के कुल पर निकला हुआ ट्यूमर है, उसको काट के फेंक दो, जाओ जैसे हो सके वैसा मार दो उसको। तो लोगों ने बहुत कोशिश किया उसको मारने का, राक्षसों ने करके उसका तलवार से और आग से विष से, हाथी के पैर तले, सांप के इसके अंदर, हाँ सांप के बिल के अंदर, हजारों विषैले सांप के बीच छोड़ दिया उसको, पहाड़ से फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, अरे कुछ नहीं हुआ उसको। सारे जितने तरीके होते ना मारने के, सब सब अपना लिए, फिर भी ये लड़का ओम नमो भगवते वासुदेवाय आंख बंद करके बैठा, उसको कुछ भी नहीं होता है। हाथी ने पाँव के नीचे दिया, हाथी ने पाँव ही नहीं दिया उसके ऊपर, हाथी का ऑर्डर दिया ऊपर से मारो उसको मारो, हाथी ने पाँव ऊपर रखा और कहीं और रख दिया पाँव, सांप के अंदर भेज दिया, सांप ने काटा ही नहीं उसको, विष का प्याला दिया, विष प्याला पिया तो विष का असर ही दिया उसके ऊपर, नो इफेक्ट। अच्छा लास्ट, अभी लास्ट, अभी क्या है ना, सब हार गए, अभी बहन को बुलाते हैं, होलिका देवी को, उसको वरदान था ब्रह्मा जी का कि वो कभी भी अग्नि में जलेगी तो खुद नहीं जलेगी, तो अच्छी अच्छी तरीका है, उसके गोद में बिठाते हैं और आग लगा देते हैं, तो बहन तो बच जाएगी और ये जल जाएगा। तो हुआ क्या, बहन जल गई है, वो ऐसा रह गया, तो बहन जल रही है तो पुकार रही है, ब्रह्मादेव ब्रह्मादेव क्या हुआ, तुम्हारा वरदान फेल कैसे हो गया, तुमने तो प्रॉमिस किया था। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा अग्नि का और तुम संकट में जलती होगी तो तुम नहीं जलोगी, लेकिन तुम कूटनीति करके पाप करके अपने भतीजे को जलाने का कोशिश कर रहे हो, अपना वरदान का गलत इस्तेमाल कर रही है, वो तो तुमको जलना ही है, तुम्हारा वरदान वहाँ फेल हो जाएगा। तो वो हाँ 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 करते करते सबके आंखों के सामने भस्म हो गई वो, तो राक्षसों ने छाती पीट कर पागल हो गए राक्षस लोग, क्या करना क्या है इसको, आप सोचो आपको ऑर्डर दिया है कि इसको शूट एंड शूट एट साइट, आपने गोला चलाया, बारूद चलाया, बॉम्ब जला सबके ऊपर, तो आदमी मरता ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप, तलवार से काटने का प्रयास किया, आग से जलाने का कोशिश किया, विष पिलाया, अरे क्या करने का क्या है इसको अंदर, अभी बॉस को मुंह कैसा दिखाने का, उसने तो ऑर्डर दिया है मारो इसको और ये मर नहीं रहा है तो हमको मरना पड़ेगा, टेंशन में आ गए सब लोग। तो जब होलिका भी जल गई तो एकदम विफलग्रस्त हो गए वो सब लोग, वो जो जल की राख हो गई ना, वो राख उठा उठा के एक दूसरे पर फेंकना चालू किया उन्होंने पागलों की तरह, वे करे क्या, उसी को होली के अंदर होता ना वो कीचड़ फेंकते ना उसके अंदर, उसको राक्षसी होली खेलते हैं बोलते हैं, जो राक्षसों ने फ्रस्ट्रेट होकर वो अग्नि की जो राख थी वो एक दूसरे पर फेंकी थी उस दिन, इसलिए हम लोग भी उस दिन होली के बाद में वो मुंह पे आवाज करते हैं, वो सब कचरा फेंकते हैं, उसके लिए रंगपंचमी उसको कहते हैं। एनीवेज फिर वापस लेके आए कि महाराज जी इसका क्या करें, चलो इसको मैं भी खुद मारता हूँ, तलवार उठाया और खंबा, जब ये डिस्कशन हो गया ना कि इधर ही भगवान है करके, खाली एक बार सोचना है 2 मिनट के लिए कि प्रहलाद की जगह पर आप होते तो कैसा होता, कोई तलवार से मार रहा है, कोई विष दे रहा है, कोई सांप के अंदर भेज रहा है, कोई जला रहा है, कोई पहाड़ से फेंक रहा है, क्या चल क्या रहा है लाइफ में, हाँ ये भी कोई लाइफ है, हर बार कोई ना कोई बड़े बड़े लोग, भयंकर लोग, जिनके दांत इतने बाहर है, बड़े सिंगे उनके ऊपर है, हाथ में बड़े शस्त्र लेकर मंत्र बोलकर क्या क्या कर रहे हैं, और वो आदमी बेचारा एकदम निस्वार्थ होकर भगवान का नाम का जप कर रहे हैं और हर जगह भगवान उसको बचा रहे हैं। इसके बाद में जो सबसे बड़ा आदमी है इससे लोग भवे उठाने के ऊपर भी डरते हैं, वो आदमी बोल रहा है तुमको मैं खुद मारूंगा, फिर भी वो शांत। भगवान पर श्रद्धा होगी ना इस व्यक्ति को, उसकी ये स्थिति है। सबसे पहली स्थिति क्या होती है, भगवान पर श्रद्धा रखने से वो निर्भय हो जाता है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। समझो आपको भी ऑर्डर दिया गया, हाँ जमका नाथ को हर तरीके से 4 घंटे के अंदर मारा जाए तो हम लोग भागेंगे यहाँ से, जान की जान को लेकर भाग जाएंगे। वो खड़ा है, जो करना है करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ नहीं कर सकते कोई लोग, कुछ भी नहीं कर सकते। ये कोशिश वो कोशिश, 50 लोग 100 लोग 200 लोग कोशिश कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है, भगवान पर श्रद्धा है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, इसको भगवान बचाता है उसको कोई नहीं मार सकता है। तो इन्होंने कुछ जैसे ही हाथ लगाया ना खंबे को, खंबा उसके मुक्का मार देने की वजह से पाउडर हो गया पूरा, उसी के अंदर तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए। ऐसा प्रकट हो गए कि उनका जो गुर्राना था ना, गर्जना सुनकर हिरण्यकश्यप एकदम डर गया एक मिनट के लिए, अरे ये कौन व्यक्ति है ऐसा, ब्रह्मा जी के द्वारा निर्माण किया जितनी जाति है उसके अंदर ये कभी देखा नहीं हमने, ये आधा सिंह है आधा आदमी है, इतनी बड़ी आवाज, कभी भी इतनी आवाज सुनकर डरा नहीं कभी मैं, लेकिन मैं पहली बार डर गया तो, लेकिन मैं तो हिरण्यकश्यप हूँ, मुझे डरना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं चलो देखते क्या होता है। अपने आप को संवार कर फिर आया, बहुत बड़ा युद्ध हुआ उनका। ऐसे कहते दोपहर के टाइम पे भगवान आ गए थे, दोपहर का समय था मध्यान्ह का, तो मध्यान्ह से लेके संध्या तक, संध्याकाल सांझ होने तक भगवान, जैसे बिल्ली किसी चूहे से खेलती है ना, ऐसा थोड़ा काटेगी फिर छोड़ देगी फिर भागेगा फिर उसके पीछे भागेगी फिर काटेगी, मतलब मारने के पहले बहुत टाइम पास करती है बिल्ली, वैसे भगवान ने हिरण्यकश्यप को बहुत ऐसा मतलब खेल खेल में उसको चलाया, कभी वो हावी कभी ये हावी, कभी युद्ध चल रहा है, ऐसा लगता है कि क्या देवता लोग ऐसा ना सब बादल में छुप के देख रहे थे, युद्ध देख रहे थे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से 6 घंटा युद्ध हुआ ना, कभी बाजी इनके ऊपर कभी इनके ऊपर, समझो हिरण्यकश्यप जीत गया और देखेगा कि ओ बादल से इंद्र छुप के देख रहा है, मारो उसको है ना, तो सब लोग बादल में छुप के देख रहे हैं कि दर्शन नहीं होना चाहिए हिरण्यकश्यप को, पता नहीं भगवान को मार दिया उसने तो हमारा क्या होगा, इसलिए छुप छुप के देख रहे हैं। उनको श्रद्धा नहीं इतनी जितनी प्रहलाद को है, प्रहलाद इतने नान से खड़ा है। उसके बाद में संध्या होती है ना, तो जैसे संध्या समय आ गया तुरंत भगवान ने सब खेल बंद कर दिया, उसको उठाया और उठाकर जो पहाड़ जैसा था उसको उठाकर दहलीज के पास में गए, घर के आंगन होता है ना वो बीच में क्या बोलते हैं उसको, उम्बर, दहलीज के पास चले गए और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर मोड़ दिया। ऐसा नहीं कि भाई स्टूल मंगाओ स्टूल कुर्सी लेके आओ मेरे को बैठना इधर, नहीं, अपने ही आधा पैर मोड़ कर दूसरा पैर रखा और एक कुर्सी बना दिया उसके ऊपर, 2-8 हाथ थे ना, 2 हाथ से पकड़ के रखा है उसको, उसको उठा के लेके आए, 2 हाथ से ऐसा पकड़ के रखा, 2 हाथ से अपने नाखून से उसका पेट फाड़ दिया पूरा कंप्लीट, क्या बोलते हैं उसको, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, पूरा फर्स्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डन इन द हिस्ट्री, पूरा फाड़ दिया, 2 हाथ पकड़ के रखा ऐसा कि हिलने जाए, 2 हाथ से फाड़ा हुआ है, 2 हाथ से आंतड़ी निकाला और गले में पहना। कितना क्रोध था उनके अंदर, इतना क्रोध था, एक ही कारण से मेरे भक्त को कष्ट दिया उसने, दुनिया भर आतंक किया राक्षसों को इसने, उसको क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे भक्त को कष्ट दिया, उसने कोई प्रतिकार नहीं कर रहा है वो, ऐसा नहीं कि वो भी खुद लड़ रहा है राक्षसों के साथ, बालक बन के जी रहा है वो, आराम से मेरा नाम पुकार रहा है, मेरा फर्ज होता है कि मैं उसको बचाऊं, वो क्रोध से केवल 2 हाथ में शंकर और कमल पकड़े हुए हैं, बाकी 6 हाथ पूरे एंगेज है उनके और गुर्रा रहे हैं इतने जोर से, उनकी आवाज जो है ना ब्रह्मांड को फाड़ कर जा रही है, 14 लोकों में गूंज रही है उनकी आवाज, उनका गर्जना सुनकर सब लोग कांप रहे हैं, बोले क्या प्रलय तो नहीं होगा ना अभी, क्या हुआ अचानक आवाज कहां से आ रही इतनी भयंकर आवाज। उसके बाद हिरण्यकश्यप का मृत्यु हो गया, फिर भी उनका क्रोध समाप्त नहीं हो रहा है, उन्होंने फाड़ा हुआ पेट में हाथ डाल के, अभी देखो आम तोड़ रहे थे, अभी नीचे आ रहा था ना मैं, अभी अपने हाउस कीपिंग के लोग गाड़ी में चढ़कर आम तोड़ रहे थे, वैसे उन्होंने उसका हाथ तोड़ दिया उधर से, हाथ डाल के ऐसा फेंक दिया जमीन पर और फिर ऐसा ढकेल दिया उसको डेड बॉडी को उसके, इतना क्रोध, फिर भी गुर्रा रहे हैं। फिर हिरण्यकश्यप के सारे परिवार के लोग थे, जितने राक्षस लोग थे, हरे कृष्णा, जितने परिवार के लोग थे सब आ गए अटैक करने के लिए, फिर अकेले हिरण्यकश्यप को जितने परिवार के लोग थे भगवान अकेले ने सब उनको खत्म कर दिया। उसके बाद भगवान घुर्राते हुए जाके सिंहासन पर बैठ गए हिरण्यकशिपु के, जहां पर वो बैठा था, उधर बैठ के भी घुर्रा रहे हैं, एकदम घुर्रा रहे हैं। अब सब समाप्त हो गया ना, शत्रु को मार दिया, उसके उसके सैनिकों को मार दिया, भरी सभा के अंदर भयंकर युद्ध हुआ, घमासान, सब खून और मांस का चिकल कचरा जमा हो गया उधर, हो गया ना। अभी क्या है, अभी फिर भी घुर्रा रहे, इतना क्रोध था उनको कि मेरे भक्त को मारा, कोशिश किया मारने का उसको। तो अभी सब लोग जो बादल के पीछे छुप गए थे ना, वो सब बाहर आ गए, बोले हमारे बॉस का विक्ट्री हो गया। हाँ, उसके पीछे कौन बैठा है? हाँ, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। तो अरे भगवान गुर्रा रहे हैं, देखो इधर आप छुपो मत, वो बादल के पीछे छुपना नहीं आप, अभी भगवान का विजय हो गया है, अभी चिंता मत करना, बाहर आ जाना। तो सारे देवता लोग बाहर आ गए, अभी बोला कि अपना शत्रु अभी मर गया, अभी कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो अभी ब्रह्मा जी है, इंद्र है, सभी चंद्र, वायु, वरुण, सब देव, सब लोग है, लक्ष्मी देवी भी है, सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन जाएगा इनके सामने, कौन शांत करेगा इनको। जब पापा बहुत गुस्से में होते हैं ना, तो बड़े भाई को भेजेंगे, छोटे भाई को भेजेंगे, मालूम नहीं पड़ता है। तो सब लोग ब्रह्मा को देख रहे हैं, ब्रह्मा तो आप तो सबके बड़े हो, आप कुछ करो। तो ब्रह्मा जी की इधर उधर देख रहे हैं खुद क्या करूँ मैं। तो ब्रह्मा सोचते हैं कि अच्छी आइडिया है, उनकी पत्नी जो है ना, उनको बोलते हैं कि आप जाओ। तो सब लोग लक्ष्मी के पास आते, ब्रह्मा जी लक्ष्मी के पास आए, लक्ष्मी देवी आपके तो पति देव हैं, आप जाइए जरा शांत कीजिए। बोलते ये अवतार को मैं जानती नहीं हूँ, ये कभी देखा नहीं आज तक मैंने, ये मेरे पति जरूर है लेकिन ये उनका अवतार मैंने आज तक देखा नहीं, तुम मुझे मत बोलो, वो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अभी क्या करें, मैं ट्रम्प कार्ड भी फेल हो गया। तो बोलते सब लोग इतने बड़े बड़े देवता तपस्वी, इतने शक्तिशाली प्रकाशमान लोग खड़े हैं, असहाय होकर खड़े हैं उधर, और वे सब लोग मिलकर ना हाथ जोड़कर खड़े हो प्रहलाद को देख रहे हैं, 5 साल के बालक को। इतने बड़े ब्रह्मा, परम पितामह ब्रह्मा, प्रपितामह, वो आकर हाथ जोड़ते, प्रहलाद अभी तुम जाओ। प्रहलाद जी ने नहीं कहा कि आई डोंट नो दिस पर्सन, हाँ मैं जानता नहीं उसको कौन है ये, तो पता था कौन थे। अरे भक्ति जो होती है ना, भक्ति जब हृदय में भक्ति होती ना, तो हम भगवान को अच्छी तरह पहचान लेते हैं। गाय का भी ऐसा ही गुणधर्म है, हमारे उधर बरसाने में ना 25,000 गाय है एक गौशाला के अंदर। समझो बछड़ा कहीं घूम गया ना, फिर भी अपनी ही माँ को जाके पकड़ेगा और उसका दूध पिएगा। कितनी हजारों गाय होंगी, सबका दूध, किसका भी दूध नहीं पिएगा वो, जब उसकी माँ को ढूंढेगा तभी पिएगा वो। और भैंस का झुंड होगा ना, तो भैंस का बच्चा किसी भी भैंस को जाके चिपक जाएगा, इसलिए उसको भैंस की अकल कहते हैं। भैंस के दूध में उतनी अकल नहीं होती जितनी गाय के दूध में होती। तो वैसे सब लोग कांप रहे, थर्रा रहे, क्यों आगे जाएगा मालूम नहीं है। प्रहलाद शांति से हंसते हुए खड़े, समझो अभी आप हो, आपके घर पे छोटा बालक है, और आप अचानक बालक स्कूल से आता है तो आप एकदम शेर का चेहरा लगा कर ऐसे करते हो, तो बालक बोलेगा हाँ ग्रैंडफादर मालूम है आपको, आप आए अपने ऐसे ताली बजा के, बोलेगा हाँ देखो दादाजी आज शेर बन गए, ऐसा करके हंसेगा ना, वो पहचानेगा कि वो मेरे दादाजी है, वो तो खेल खेल में शेर का मुखौटा लगा कर आए हुए हैं। वैसे ही वो जानते हैं मेरे भगवान है, वो हाफ मैन हाफ माय लायन बनकर आए हुए हैं। तो कोई टेंशन नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, एकदम इत्मीनान से आगे गए वो, जाके भगवान को हार पहनाया उन्होंने। जैसे ही उन्होंने हार पहनाया भगवान शांत हो गए, और जैसे सिंह होता है ना अपने प्यारे बछड़े को, उसको छावा कहते हैं, छावा, उसको गोद में लेकर क्या कर, प्रेम कैसे करता है शेर अपने बच्चे पर, बताओ, जीभ से चाटते हैं उनको प्रेम से। गाय भी कैसे करती है, कोई भी जानवर अधिकतर चाटते रहते हैं। तो इसने भगवान ने प्रहलाद को शेर के मतलब सिंह के बालक की तरह पूरा चाटा और प्रेम किया उसके ऊपर सारा, और क्रोध शांत हो गया उनका। तब जाकर सारे देवता आगे आए, उन्होंने भी वंदन शुरू कर दिया उनका। फिर भगवान ने कहा प्रहलाद तुमने मेरे लिए कितना कष्ट सहन किया। तो प्रहलाद ने कहा मैंने कुछ नहीं कष्ट सहन किया आपके लिए, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, मैं तो हमेशा आपका नाम लेते रहा, कैसे बच गया आपको ही मालूम, मैं जहां जहां मेरा भेजा गया मुझे वहां पर मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही पुकारता रहा, मुझे पता नहीं, मैंने कुछ कष्ट नहीं सहन किया, कोई तपस्या नहीं किया, कोई परेशानी को झेला नहीं, कुछ नहीं। फिर भगवान बोले नहीं 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 मेरे लिए तुमने बहुत कष्ट सहन किया है, मुझे आपको वरदान देना है, कुछ ना कुछ वरदान मांगो मुझसे। तो प्रहलाद कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद भगवान को एक इंपॉर्टेंट वाक्य बोलते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना, किसका मुझे बज रहा है म्यूजिक? तो प्रहलाद भगवान को कहते हैं कि मैं व्यापारी नहीं हूं, मैंने तुमसे कुछ प्राप्त करने के लिए ये सब तपस प्लानिंग नहीं किया था कि ऐसे करूं वैसे करूं सहन लूं और आपके सामने दिखाऊं मैं कितना बड़ा भक्त हूं, बाद में एंड में जावा बोलेंगे क्या चाहिए तब मैं मांग लूंगा जो मांगना मेरे मन में है। बोले व्यापारी नहीं हूं मैं, प्लीज भगवान मैं विनती करता हूं आपको, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। सब लोग छाती पर हाथ तक सोचना, अभी आपके सामने भगवान खड़े हो गए, बोलते हे भक्त मेरे वत्सल, भक्त वत्स, क्या चाहिए तुमको बोलो, जो चाहिए वो मांग लो। तो हम लोग बोलेंगे भगवान 10 मिनट देना, 10 मिनट, एक पेपर लेके आता हूँ जरा प्लान करता हूँ क्या क्या चाहिए, बहुत दिन से बहुत मेरी इच्छा यहाँ पूर्ण थी, मैं सोच रहा हूँ अभी अच्छा मौका है, थोड़ा टाइम दो जरा, मैं 15 मिनट के बाद में आता हूँ, आप भी थोड़ा चाय पे के आ जाना, मैं भी आता हूँ जरा सोच के। हम लोग बोलेंगे अच्छा मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, एक ही बार आया है, मांग लो चाहिए वो मांग लो, दिल की इच्छा पूरी कर लो। लेकिन भक्त का हृदय कैसा होता है, भगवान खड़े हैं वो आपको एक लोक भी दे सकते हैं, लोक अलग से, जैसे ध्रुव को एक लोक दे दिया, ध्रुव लोक दे दिया, बोलो इतनी शक्ति है भगवान के अंदर। हमारे पापा हमको एक फ्लैट नाम पे कर देंगे, जाओ मलबारी में तुम्हारे नाम पे एक फ्लैट कर दूंगा, भगवान तुमको एक लोक दे रहे हैं, पूरा लोक, अष्ट सिद्धि दे रहे हैं, सब ऐश्वर्य दे रहे हैं, आनंद खुशी सब दे रहे हैं, फिर भी भगवान का भक्त जो है प्रहलाद बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांगो, मुझे देना है तुमको, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ तुम्हारे लिए, तुमने मेरे लिए कितना सहन किया, इतना बालक होने पर इतना आतंक इस बड़े राक्षस का। तो कहते हैं मेरी एक ही मांग है आपसे भगवान, मुझे ना डर लगता है एक ही चीज से दुनिया में, तुम्हारे जो भक्त होते ना वैष्णव भक्त संत होते ना, उनका मेरे हाथ से अपराध नहीं होना चाहिए, मुझे एक ही बात का डर है, और दुनिया में मैं किसी बात से डरता नहीं हूँ, मैं ना मैं पिताजी से डरा, पिताजी ने इतना आदेश दिया मारने का तब मुझे डर नहीं लगा, राक्षस मुझे मार रहे थे तभी मुझे डर नहीं लगा, कभी भी डरने लगा मुझे, लेकिन मैं वैष्णवों का और संतों का अपराध बुराई और टीका करने में मुझे डर लगता है, इससे मुझे बचा लेना बस, मेरे हाथ से मेरे मुंह से कभी वैष्णवों का अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं जब वैष्णवों का अपराध होता था आप उसको छोड़ते नहीं। तो फिर बोल रहे पिताजी, बोल रहे ये भी कुछ वरदान नहीं होता यार, कुछ और मांग लो मुझसे आप, बोले इतना ही है भगवान ऐसा ही है, तो एक काम करना, ये मेरे पिताजी है ना बहुत पापी है, इन्होंने बहुत पाप किया है, इतना पाप किया है कि पता नहीं इनका उद्धार कैसे होगा, क्या मैं आपको विनती कर सकता हूँ कि इसका उद्धार कर दो आप, हाँ डिलीट मार दो सब उसका। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने भी अजीब उत्तर दिया, भगवान ने बोलते तथास्तु जो आपकी इच्छा है पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं बोला भगवान ने, भगवान ने बोला अरे प्रहलाद ये तुम्हारे पिताजी है ना, ये तुम्हारे पिताजी है इसी कारण इनका ऑलरेडी उद्धार हो चुका है, उनको पूछने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम मम्मी को जाके बोलेंगे मम्मी दोपहर को खाना खिलाओगे ना आज, तो बोले क्या बेटा जब से पैदा हुआ तब से खिला रही हूँ, और रात का भी इंतजाम कर दिया और कल का भी तैयारी हो गया मेरा अभी, और कल सवेरे शाम का भी तैयारी हो जाएगा, वो बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बेटा हो, बेटा तुम मेरे पुत्र हो, वो तुमको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है एप्लीकेशन, मम्मी अभी ब्रेकफास्ट का अप्लाई कर रहा हूँ, बाद में दोपहर को 10 बजे तक लंच का अप्लाई कर दूंगा, फिर शाम को 6 बजे डिनर का अप्लाई कर दूंगा, हो जाएगा ना 2 घंटे के पहले बोलेगा तो। ऐसा हम लोग घर में करते हैं कभी क्या, आते ही पूछते मम्मी खाने को क्या है, तो तुरंत खामने प्लेट तैयार होता था। वैसे वो बोल रहे हैं कि तुम्हें पूछने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा पिताजी है ना वो, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा पिताजी होने के नाते राक्षस होने पर भी उसका उद्धार हो चुका है, और सुनो आगे सुनो, बोलते हैं भगवान तुम्हारे पिताजी का पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे आने वाले और 10 पीढ़ी और तुम्हारे पीढ़ी 11वीं और तुम्हारे पीछे के 10 पीढ़ी कितने हो गए, कितने हो गए 21, तुम्हारे पीछे वाले 10, तुम्हारी 1 और तुम्हारे आगे वाली 10, 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया ऑलरेडी, क्योंकि तुम एक भक्त बने हो, इसलिए क्योंकि तुम मेरे भक्त बने, तुम्हारे एक भक्त एक व्यक्ति के भक्त होने की वजह से तुम्हारी 21 पीढ़ी का ऑलरेडी उद्धार हो चुका है, उनको स्पेशल एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नाम पे ही तर जाएंगे वो। इसलिए भगवान ने आगे जाकर बलि को नहीं मारा, क्योंकि बलि जो है वो प्रहलाद का ग्रैंडसन था, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि, तो बलि भी राक्षस था, उसने भी राक्षस देवताओं को कॉन्कर करके बहुत परेशान कर दिया था, भगवान ने मामा अवतार लिया लेकिन बलि को मारा नहीं, बाकी सब राक्षसों को मारा, ये रावण को मारा, कंस को मारा, सबको मार दिया, क्योंकि भगवान को अपना दिया हुआ वरदान याद रहता है, कभी भगवान खुद बोलते नहीं है कि बोले दो पीढ़ियां हो गई ना भूल गया मैं जरा इसलिए मार दिया उसको गलती से बाय मिस्टेक, नहीं दो पीढ़ी हो, दो युग हो, 50 युग हो, भगवान अपने वादा कभी भूलते नहीं है। तो इसलिए बलि को उन्होंने केवल अरेस्ट कर लिया और बलि को वरदान दिया उन्होंने। अभी अभी आगे की कहानी सुनना, किसी को जल्दी नहीं ना, अभी तक की कहानी सबको मालूम थी, बच्चे बच्चे को मालूम थी, लेकिन आगे जो बता रहा हूँ वो कहानी आपको निश्चित पता नहीं है, वो ध्यान से सुनो और जिसको नींद आ रही है वो खड़े हो जाओ, क्योंकि ये कहानी आप पहली बार सुन रहे हो, ठीक है ना। तो जब महाबलि को वामन देव का अवतार लेकर भगवान ने वरुण पास से बांध कर भगवान उसको घसीट रहे हैं अपमान करके, उसने भी 14 भुवन को पदाक्रांत किया था और देवताओं को भगा कर गुफा में बंद कर दिया था, और इंद्र बनने के लिए वो 100 यज्ञ कर रहा था और 99 यज्ञ पूरा भी कर दिया था उसने, और 100वां यज्ञ चल रहा था उसका, वो अगर पूरा होता है तो वो इंद्र बनने वाला था, इंद्र पद को प्राप्त करने वाला था। तो 100वें यज्ञ में भगवान ने वामन देव के रूप में अवतार लिया और ब्राह्मण के रूप में दान में 3 भूमि जमीन मांगी, और सारा जो निर्माण था जितना भी प्रॉपर्टी था वो सब नाप लिया उन्होंने, तो सर पे पाँव रखा भगवान ने। तो लोगों को लगता है कि भगवान ने बलि को तो पूरा फलक एकदम फकीर बना दिया, पूरा एकदम लाचार बना दिया बाहरी दृष्टि से, सही बात है, लेकिन उसके आगे की कहानी बहुत रोचक है। बलि भगवान का भक्त था, उसको वरुण पास बांधने के बाद जो घसीट कर लेके जा रहे थे उसमें उसको बड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि मेरे भगवान मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं, लग रहा है कि बहुत बड़ा भयंकर आतंक कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन अंदर से बड़ी कृपा कर रहे थे भगवान उसके ऊपर। ये सब होने के बाद भी भगवान ने उसको वरदान दिया कि तुम्हारा इंद्र बनने का इच्छा था ना, कोई बात नहीं, मैं तुमको इंद्र से भी बड़ा राज्य दूंगा, सुतल लोक जो होगा पाताल देश में, लेकिन इंद्र लोक से भी अधिक पावरफुल रहेगा वो, यहां तक कि मुझे डर है कि वो तुमको देने के बाद में मेरा इंद्र जो है ना, असली इंद्र जो है उसको ही ईर्ष्या हो जाएगी, जलन हो जाएगी, और वही आक्रमण करेगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं तो भक्त हूँ और भक्त होने पर भी मुझे तो इतना बढ़िया किंगडम नहीं दिया, और मैं असुर को भगवान ने मुझसे बढ़िया किंगडम दिया, तो वही आक्रमण करेगा, तो उससे आपकी रक्षा करने के लिए मैं मेरे चक्र को भी भेज रहा हूँ आपके पास, वो आपके लोकों की, आपके लोक की, सुतल लोक की इंद्र आदि आतंकवादियों से रक्षा करेगा, जब वो आक्रमण करेंगे तो चक्र ही संभाल लेगा, तुम आनंद लेते रहोगे। वो बोले कि आप राक्षस परिवार में रहोगे लेकिन राक्षस परिवार के लोगों का जो दिमाग है उसका परिणाम तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तुम भक्ति बने रहोगे। कितना 36,000 साल का वरदान दिया उसको, इतने साल में सारा भोग मिलेगा आपको, आनंद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन दुनियादारी में आप आसक्त नहीं रहोगे, ये बड़ा वरदान दिया उन्होंने, एंजॉय करोगे आप लेकिन उसमें फंस नहीं जाओगे, और एंड में मेरे लोक में चले जाओगे आप, मेरे लोक में आपको मुझे आश्रय दूंगा मैं आपको। सुनिए जोगानाथ जी, फिर वो बोलते हैं यही नहीं और एक वरदान बाकी है लास्ट, वो सुन लो, इतना सारा वरदान देने के बाद बोलते हैं एक और बाकी है वरदान, वो कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारे सुतल लोक में द्वारपाल बनूंगा, गेट कीपर बनूंगा, जिस गेट से तुम जाओगे उस गेट पे पहले खड़ा हो जाऊंगा मैं। आप सोच सकते हो त्रिभुवन नाथ त्रिलोकेश्वर विष्णु भगवान जो है ना, वो अपने भक्त के लिए गेट कीपर बने हुए हैं, वॉचमैन बने हुए हैं, इतना प्रेम करते भगवान अपने भक्त पर। तो ये सुनने के लिए प्रहलाद जी भी आए थे कि मेरा ग्रैंड सन पर इतनी कृपा हो रही है, तो वो भी आए थे उधर सब देखने के लिए, इतनी बड़ी कृपा हो रही है मेरे पुत्र के ऊपर, महाबलि के ऊपर। अब एक बात बताना भूल गया मैं, जब भगवान ने प्रहलाद के लिए अवतार लिया था नरसिंह भगवान का, और जब अवतार समाप्त करके भगवान जा रहे थे तो उन्होंने कहा भगवान अभी आप जा रहे हो, मेरे को बहुत याद आएगी आपको, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना, तो नरसिंह भगवान ने अपनी ही एक मूर्ति दी थी उसको, उग्र नरसिंह की, जिसमें वो खुद ऐसे खड़े हैं, काट रहे हैं उसको, माला डाल रहे हैं, और वो एक इतनी सी मूर्ति दी उनको हाथ में, बोले ये मूर्ति का पूजा करना, इसके रूप में मैं आपके साथ में हमेशा रहूंगा, आप मेरा ना होना महसूस नहीं करोगे, ये मूर्ति के रूप में मैं आपके साथ रहूंगा, इसका पूजन करना, आनंद लेना। तो उस मूर्ति को लेकर वहां पर आए थे वो देखने के लिए क्या ना क्या चल रहा है वहां पर। जब उन्होंने सुना कि मेरे भगवान अभी वामन देव के रूप में आकर अभी सुतल लोक में जाने वाले हैं द्वारपाल बनने के लिए, और वहां पर मेरे ग्रैंड सन को कांस्टेंट संग देने वाले हैं, दर्शन देने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, तो मैं क्यों यहां पर रहूं। तो उन्होंने वो मूर्ति किसी को दे दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे चले गए सुतल लोक में। अभी मूर्ति को देखूं, उनको प्रत्यक्ष देखूंगा मैं। तो साउथ इंडिया में छोड़ दिया उन्होंने मूर्ति और वो चले गए सुतल लोक, जहां पर महाबली रहने लगे। अब ये कहानी सत्ययुग की कहानी है। तो सत्ययुग के बीत गया, फिर त्रेतायुग रामचंद्र का भगवान का अवतार हो गया, वो खत्म समाप्त हो गया। फिर वो द्वापर आए, कृष्ण भगवान का अवतार हो गया। फिर कलयुग आया, उसमें भी 800 साल खत्म हो गए। तो मेरी जो जाति है ना, मेरी जो जिस जाति से मैं आया हूँ साउथ इंडिया से, उड़पी से, वो हमारे एक स्वामी जी हैं, वो अभी 800 सन की बात कर रहा हूँ मैं। आज तो हम 2016 में है ना, वो तो मैं 800 की बात कर रहा हूँ, ये तो 2100 चल रहा है ना, 2016। तो 800 के समय पे हमारे जो स्वामी जी थे हमारे परिवार के, वो उधर कोचीन में, उनका आश्रम अभी भी है वहाँ पर, वो जा रहे थे ऐसे, तो एक कुएं के पास में उनको एक नाग दिखाई पड़ा, ऐसा बड़ा एकदम अद्भुत नाग। तो साधु है, उसको तो बहुत दिव्य अनुभूति होती है, वो देख के समझ गए कि कुछ है इसके अंदर। शिष्यों को बोला जाके देखो उस कुएं में क्या है। तो शिष्यों ने जब कुएं में देखा तो कुएं में उनको उग्र नरसिंह भगवान की मूर्ति मिली, वही मूर्ति जो प्रहलाद जी ने छोड़ी थी, इसकी पूजा समाप्त होकर किसी ने उसको वो कुएं में डाल दिया था। तो उनको बड़ा आनंद हो गया कि भगवान नरसिंह भगवान ने दर्शन दिया हमको, सेवा करने का मौका दिया। तो लेके गए अपने आश्रम में और सेवा चालू किया। जब से नरसिंह भगवान की मूर्ति वहां पर आई, तब से आग लगना, झगड़ा, धड़ाधड़, कुछ भूकंप चालू हो गया उधर। तो वो समझ गए कि ये नरसिंह भगवान की पूजा करना इतना आसान काम नहीं है, थोड़ी सी गलती हो गई तो भी बहुत बड़े अपराध सहन करने पड़ते हैं। तो एक दिन प्रार्थना कर करके, क्षमा मांग मांग के, स्वामी जी बहुत थक गए, बोले अभी तो पता नहीं आपको प्रसन्न कैसे करना है, बता दो भगवान कैसे करना है, नहीं तो मैं आपको लेकर समुद्र में आत्महत्या कर लूंगा, अभी तो मेरे जीवन में कोई बचा ही नहीं, क्योंकि अगर आपको मैं प्रसन्न नहीं कर सकता तो मेरे हाथ से गलतियां आपकी पूजा में होती हो रही है, इसके वजह से इतने परिणाम हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि अभी बस मुझे माफ़ करना और मैं आपको लेकर अभी समुद्र में कूदता हूं। तब भगवान ने आवाज से उनको आदेश दिया, उन्होंने कहा कि मुझे यहां रहना नहीं है, मुझे मुल्की में रहना है, कर्नाटक में, उसका नाम है मुलिका क्षेत्र, वो मेरे मम्मी का गांव है। हाँ, उसको भी मुल्की बोलते हैं, कितने लोगों को पता है मुल्की किधर है? हाँ, जो लोग साउथ इंडिया में जानते हैं मुल्की, तो वो मुलिका क्षेत्र नाम है उसका। वो शंभवी नदी के किनारे बसा हुआ है, बहुत सुंदर वो जगह ऐसी है, जिसमें त्रेता युग में जब हनुमान जी संजीवनी को लेकर उड़ रहे थे ना दक्षिण की ओर, तो उनको लगा लंका आ गया, इसलिए वो उतर गए उधर, वो हमारा गांव था, लेकिन बाद में बलवंत तो मनुष्य है, इधर राक्षस को है नहीं, लेकिन इतना सुंदर लंका, इतना साम्राज्य सुंदर यहाँ पर और कोई नहीं है, वो भूल कर वहाँ उतर गए थे। रावण भी जब कुबेर का पुष्पक विमान चुरा कर जा रहा था ना, तो बीच में सुंदर जगह को देख के उतर गया था, इतना सुंदर स्थान कहाँ पर है, उतर गया था। तो उसको बड़ा आनंद आया, उसने अपने इष्ट शिव जी का वहाँ पर एक लिंग स्थापन किया और चला गया। वो वहीं पर हनुमान जी भी उतरे थोड़ा सा भूल कर कि लंका को देख कर, फिर वापस चले गए। तो वो बोल रहे मुझे वहाँ जाना है, तो तुरंत उसने आश्रम छोड़ दिया। स्वामी जी ने विष्णु जी का, नरसिंह भगवान का मूर्ति सर पे लिया और यात्रा शुरू किया पैदल, दिन भर पैदल, रात को विश्राम किसी जगह पर, किसी घर में, आश्रम में, फिर सुबह सूर्योदय हो गया तो फिर आगमन, फिर चलना आगे। ऐसे करते करते बहुत महीने के बाद में वो हमारे मैंगलोर क्षेत्र में पहुँच गए और फिर दिन भर प्रवास किया। तो रात के समय पर ना वो एक जगह पर पहुंचे जहाँ पर वही गांव था जहाँ पर शिवलिंग है रावण के द्वारा स्थापित, जहाँ पर हनुमान जी उतरे थे, उसका नाम है वड़ा लंका, उसको कहते हैं लंका समान क्षेत्र। तो वहाँ पर जब पहुँच गए तो संध्या हो चुकी थी, तो विश्राम करने का समय था। उन्होंने राजमहल के पास गए और राजा को निरोप दे दिया कि हमको रात को विश्राम करना है। तो उस समय जैन लोगों का वहाँ साम्राज्य था, जैन राजा राज्य कर रहा था। तो आया, देखा साधु को, देखा, बोला कि कौन है ये, पता नहीं कहाँ से आए, कोई जादुई लोग है, कोई टोना वाले लोग है, क्या मिस्टिक है, क्या मालूम। और नहीं नहीं, बोलते यहाँ पर रहना नहीं, आप जाओ, इधर आपको रहने के लिए परमिशन नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है हम जाएंगे, हमको कम से कम मशाल दे दो, मशाल, ताकि रात के अंधेरे में हम कहाँ जाएंगे। बोले मशाल भी नहीं देंगे? तो स्वामी जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि अरे राजा, इस देश का राजा ऐसा है जो साधु की इच्छा को पूरा नहीं करता है, मशाल देने को भी तैयार नहीं है, तो मुझे तो किसी भी हालत में इस यहाँ रहना नहीं है, चाहे अंधेरा हो, दिन में कुछ भी हो, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, ये अशुभ जगह है, राजा ही इस भावना में है तो प्रजा कैसी होगी इधर, मुझे एक क्षण भी यहाँ पर रहना नहीं है, मुझे अभी कभी चलना है। शिष्यों को बोला चलो आगे चलते रहो, अंधेरा हो कुछ भी हो। जैसे ही सर पर नरसिंह भगवान की मूर्ति को लेकर वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो बिजली कड़की महल पर, राजा के महल पर, और इतनी बड़ी आग लगी कि 12 किलोमीटर तक उसका प्रकाश पड़ता रहा। स्वामी जी ने क्या बोला था, मुझे रास्ता देखने के लिए मशाल चाहिए, भगवान ने ऐसा मशाल बना दिया यहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ पहुँचना है वहाँ तक। इतनी बड़ी आग आकाश में लगी, पूरा महल जलकर खाक हो गया, सब लोग भाग गए महल से, और वो प्रकाश को पकड़ते हुए झप 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 वो पहुँच गए अपने स्थान पर, मूलिका क्षेत्र पहुँच गए, और वहाँ पर भगवान को रखा उन्होंने। वो दिन दत्त पूर्णिमा थी, हमारा दत्त पूर्णिमा होता है ना, पूर्णिमा का दिन था उस दिन, वो मूर्ति का वहाँ पर स्थापना किया गया। आज भी हमारे गांव में वो प्रहलाद के द्वारा पूजित उग्र नरसिंह की मूर्ति स्थापित है, और हमारे गांव में अभी भी ऐसा एक इतिहास है कि गांव में अगर कोई हिरण्यकश्यपु को मारते हुए चित्रपट नरसिंह भगवान का अपने घर पर लगाएगा तो घर पर आग लगेगी उसके। आज भी हमारे पूरे गांव में सब लोग नरसिंह के भक्त हैं, ऐसा नरसिंह का बात करते ऐसे प्रेम से बोलने लगते हैं ना कि आपको हैरान हो जाएगा आपको देखकर। गांव के सिंपल लोग बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं नरसिंह भगवान के। तो एक दिन हमारे गांव में ना, एनीवे ये कहानी पूरी करता हूँ, तो जब वो महल जलकर खाक हो गया और यहाँ पर भगवान का मूर्ति स्थापन हो गया, तो राजा का पुरोहित ने बोला कि देखो तुमने ना वो साधु का बड़ा अपराध किया है, इसके वजह से तुम्हारा महल जल गया। तो रिपेयर करने को कोशिश किया, तो रिपेयर करने के लिए लकड़ी जब बाहर से आती थी ना तो अच्छी लकड़ी रहा, अभी तो ये अच्छा है ना, जैसे ही इसको अंदर लेके आया तो खाक हो गई वो, मतलब कुछ जले जली नहीं लेकिन जली हुई ऐसे नजर आती थी वो अच्छी लकड़ी, जब ये हॉल के बाहर से अंदर आते ही जली हुई दिख रही वो पूरी खोखला होकर। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो राजा परेशान हो गया कि रिपेयरिंग भी नहीं कर सकते अभी, तो लकड़ी बाहर से अच्छी लाता हूँ वो भी जली हुई नजर आती है इधर, तो क्या करें। तो राजपुरोहित ने आदेश दिया, जाओ उस महाराज का क्षमा मांग के आओ, माफ़ी मांगो उनकी, जब वो माफ़ करेंगे तभी कुछ तुम्हारा कल्याण होगा। तो राजा जो इतना गर्व से उसको मना कर दिया था, वो एकदम नतमस्तक होकर पहुँच गया। महाराज को खबर मिली कि महाराज आ रहे हैं, स्वामी जी को खबर मिली, स्वामी जी बड़े दया से उनका स्वागत किया उन्होंने, चरणों में गिरे, महाराज जी मैंने आपको समझा नहीं कि भगवान को पहचाना नहीं, मैंने आपका अपमान किया, आपको आश्रय नहीं दिया, आपने केवल मशाल मांगी थी, रात को एक झोपड़ी में रहने के लिए मांगा था, उतना भी मैंने दे दिया, मैं बहुत कष्ट भोग रहा हूँ, मुझे माफ़ करना महाराज। तो फिर महाराज ने माफ़ कर दिया उसको। तो माफ़ कर दिया महाराज ने, तो फिर उसके बाद तुरंत उसका महल रिपेयर हो गया, सब लकड़े वकड़े अच्छी तरह से। तो लकड़ी का महल रिपेयर हो गया, तो महाराज स्वामी जी को महाराज ने बोला, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है, अभी आप अपने दिन भगवान मेरे दरवाजे पे आए थे, भगवान उसको मैंने नकार दिया, उनको लेकर आइए आप हमारे दरबार में और हम बड़ा उत्सव मनाएंगे, पूरे तुम्हारे गांव में जितने हजारों लोग हैं सबको खाना खिलाएंगे, बड़ा उत्सव मनाएंगे, नाटिका नृत्य गायन सब फूल फल से भगवान को भोग लगाएंगे, बड़ा उत्सव मनाएंगे, आइए महाराज प्लीज़। तो फिर हमारे महाराज स्वामी जी भगवान को लेकर उनके पास गए और बड़ा उत्सव मनाया। आज भी उस तिथि को हमारे गांव से भगवान का उत्सव मूर्ति को लेकर जाकर उस गांव में उत्सव होता है, आज भी उस तिथि को। तो ऐसे हमारे गांव में उग्र नरसिंह का मूर्ति है, इतनी सी मूर्ति है, उसको देखेंगे ना आप, एक तो देख नहीं पाते बहुत दूर रहती है वो, लेकिन उसका फोटो निकाल कर एक दीवार पर लगाया है मंदिर के अंदर ही, उसको देखेंगे तो आपको देख के डर लगेगा, इतना बड़ा मुंह उनका खुला हुआ है, जबान लटक रही है अंदर, और जिस प्रकार से खड़े इतने क्रोध में बड़ी बड़ी आंखें उनको फाड़ रहे हैं ना, इतनी सी मूर्ति है लेकिन बहुत भयंकर उग्र नरसिंह। तो ऐसा ये प्रहलाद के समय का जो कहानी है उसका लिंक जो है कलयुग तक लगा हुआ है। और दत्त पूर्णिमा का दिन वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होता है, आज भी पूरा हमारा जितना कर्नाटक का गाँव है सब वहाँ पर आ जाते हैं, 21,000 नारियल के पानी का अभिषेक करते हैं उसी भगवान का, रात भर फायर वर्क करते हैं, पूरा बड़ा उत्सव मनाते हैं, रथ यात्रा करते हैं रात को नरसिंह भगवान की, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अभी कथा समाप्त होने का समय हो गया है, समझना हमको इतना ही है, अगर हम भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं और उनको शरण जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको स्पर्श नहीं कर सकती है, दुनिया की कोई भी ताकत हमको कष्ट दे सकती नहीं है। हम निर्भय हो जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती आपकी ओर टेढ़ी आंख से देखने की, केवल एक ही करना है आपको, हृदय से उनका नाम लेना है और हृदय से उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करना है, प्रामाणिकता से, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करना है, कोई स्वार्थ रखी नहीं करना है कि मुझे कुछ मिलेगा उनसे, कुछ मेरा हाँ कुछ बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ऐसा नहीं, दिल से आपको उनका नाम याद करना है तो कदम कदम पर आपका साथ देंगे वो। उनकी याद करने से वो मजबूर हो जाते हैं, जो याद कर रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए, चाहे वो छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, देवता हो, कुछ भी हो, अगर वो उनकी शरण में आया है तो उनकी वो मजबूरी हो जाती है कि मेरे शरण में आया है तो रक्षा करना मेरा फर्ज है। खुद आकर रक्षा करते हैं, ऐसा अद्भुत अवतार लिया जो 84 लक्ष योनि में किधर नहीं है। हिरण्यकश्यपु आश्चर्य हुआ था, ये तो 84 लक्ष के अंदर आता नहीं है, हाफ मैन हाफ लायन ऐसा कोई योनि बनाया नहीं ब्रह्मा जी ने, तो सारे ब्रह्मा जी के वरदान को बरकरार रखने के लिए ऐसा अवतार लिया उन्होंने। शाम तक वेट किया क्योंकि दिन और शाम का भी वरदान था ना उसको, शस्त्र से भी वरदान था इसलिए नाखून से मारा। सारे ब्रह्मा के वरदानों को इंटैक रखते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया। तो भगवान का सहारा लेने से कोई नुकसान नहीं होता किसी का, भगवान का सहारा लेने वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, वो कितना भी कमजोर रहेगा तो सबसे बड़े बलवान व्यक्ति का सहारा लेकर वो सबसे बड़ा बलवान हो जाता है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इतना बड़ा हिरण्यकश्यपु कि भवे के बाल उठाने पर भी देवता कांपते थे, लेकिन प्रहलाद का एक बाल बाका नहीं कर सका, उसको मारने की इच्छा थी, उसको खत्म करने की, बाल को भी छू नहीं सका उसको, इतना सा प्रहलाद 5 साल का, जैसे मेरी बेटी इतनी सी थी 7 साल की, इतने बड़े डॉक्टर शेट्टी, 2 मुकुट का, 2 फुट का ऊपर मुकुट, 4 फुट की तलवार, फिर भी वो प्रहलाद कैसा है, हरी बोल, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, हम सब लोग प्रहलाद जैसे बन सकते हैं, भगवान का नाम लो और अपने जीवन को संपन्न करो। थैंक यू वेरी मच, हरी बोल।